Sit more on the wall. सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, हम सब लोग साधक के जीवन की समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। दिखाई देने वाले जगत के साथ हम क्या करें, सुने हुए प्रभु के साथ हम क्या करें। सुने हुए प्रभु के संबंध में अनुभवी संत की वाणी हम सुन रहे थे, उसमें उन्होंने यह बताया कि नित्य विद्यमान परमात्मा के उपस्थित होने का जो आनंद है और उसके प्रेम स्वरूप से अभिन्न होने की सरसता है, इसका अनुभव व्यक्ति को कैसे होगा। उत्तर बताया कि परमात्मा से अभिन्न होने का उपाय है उनको अपना मानना। हम सब लोगों ने भगवत भक्ति के रूप में बहुत सुना है कि भाई भजन करो, भजन करो, प्रभु का नाम लो। तो भजन शब्द का अर्थ महाराज जी ने बताया प्रियता, परमात्मा के प्रति हमारे हृदय में प्रियता हो तो उस प्रियता को भजन कहते हैं। क्यों? मैंने ऐसा सुना कि भजन से भगवान को आनंद मिलता है। भजन उसको कहते हैं जिससे कि जिसका भजन हम कर रहे हैं वह आनंदित हो, उसको प्रसन्नता मिले। तो ऐसा भजन शारीरिक क्रियाओं के आधार पर नहीं होता है। भजन का असली अर्थ बताया महाराज जी ने प्रियता। तो परमात्मा कैसे मुझको प्रिय लगे, प्रियता के भाव का अर्थ है भजन। प्रियता कैसे जगती है, अब अभी आप सोच करके देख लीजिए कि बहुत से लोग बैठे हों, कहीं भी रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, और किसी जगह पर, और किसी सभा सम्मेलन में बहुत से लोग बैठे हों, उसके बीच में एक दो व्यक्ति ऐसे भी हो जिनको कि आपने अपना माना है। तो थोड़ी थोड़ी देर में ध्यान उन पर जाएगा जिनको कि आपने अपना माना है, और उनकी उपस्थिति से आपके भीतर एक प्रकार का हर्ष का संचार होता रहेगा कि जिनको आपने अपना माना है। संसार के व्यक्तियों को अपना मानना यह है, नित्य संबंध नहीं है, परंतु साधन रूप संबंध बना सकते हैं। आसक्ति पैदा करने वाली बात तो भूल है, लेकिन माने हुए संबंधियों के संबंध को साधन रूप बनाया जा सकता है, जिससे कि हम अपनी आसक्ति को मिटा सकें, अशुद्धि को मिटा सकें। लेकिन यह माना हुआ संबंध जो है व्यक्तियों के साथ, वो सदा के लिए निभने वाला नहीं है। थोड़े दिन के लिए संयोग बन गया तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, थोड़े दिनों के लिए जिन व्यक्तियों से संबंध बन गया है, पता नहीं वह संबंध कब बिछुड़ जाए। तो इस बीच में समझदार लोग उस माने हुए संबंध को साधन रूप बनाकर जल्दी जल्दी जो आदर प्यार सम्मान सेवा देने की है वो दे करके संबंध की आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वो सदा के लिए रहने वाला नहीं होता है। परमात्मा के साथ जो संबंध है वह है मेरे मानने से बन जाता हो और न मानने से बिगड़ जाता हो, ऐसा नहीं होता। ये अंतर है उसमें। व्यक्तियों के साथ माना हुआ संबंध मानो तो बना रहेगा और मानना छोड़ दो तो बिगड़ जाएगा, ऐसा होता है। ऐसा इस जगत में समाज में आपने अनेक बार देखा है। जब तक मानते रहो तब तक संबंध का प्रभाव रहता है और संबंध मानना छोड़ दो तो प्रभाव मिट जाता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना और उनके साथ अपने आत्मीय संबंध को मानना ऐसा नहीं है कि मेरे मानने से बन जाता हो और न मानने से बिगड़ जाता हो, ऐसा नहीं है। कैसा है वो कि उनकी ओर से मेरे साथ जो नित्य संबंध है वो तो कभी टूटता ही नहीं है। परमात्मा कभी किसी प्राणी को अपने से अलग करते ही नहीं है और हम लोगों को वे कभी भूलते ही नहीं है, तो वे सदा ही याद रखते हैं, वे सदा ही भीतर बाहर विद्यमान रहते हैं, वे सदा ही हम लोगों को अपना करके मानते ही हैं, जानते ही हैं। अंतर क्या होता है? अंतर होता है मेरी ओर से। मैंने देह बुद्धि से जीवन को देखा और जगत के संपर्क से सुख भोगने में अपने को लगाया तो उस नित्य संबंधी की ओर से विमुखता हो गई, उसकी विस्मृति हो गई मेरी ओर से। सत्संग के प्रभाव से संत की वाणी का आदर करके, वेद वाक्यों का आदर करके, भागवत पुराण रामायण गीता आदि के वाक्यों का आदर करके यदि मैंने परमात्मा को अपना करके स्वीकार किया तो इससे सत्य स्वीकृति के प्रभाव से हमारे अपने ही अहम रूपी अणु में परिवर्तन आरंभ होता है। आज की दशा कैसी है? तो आज की दशा ऐसी है कि आंखें खोलकर देखो तो विविध रूप जगत दिखाई देता है और आंखें बंद कर लो तो घोर अंधकार हो जाता है। ठीक है जी, आंखें खोलो तो विविध रूप जगत दिखाई देगा और आंखें बंद कर लो तो घोर अंधकार हो जाएगा। ये दशा है आज की। लेकिन उस अविनाशी अनादि अनंत नित्य विद्यमान अनंत माधुर्यवान परमात्मा को अपना मानो तो अपना मानने से अपने ही में इतना परिवर्तन हो जाता है कि आंखें खोलकर देखो तो जित देखो तित तू ही तू, जहां देखो वहां वही दिखाई देता है। जित देखो तित श्याममयी है, जहां देखो वहां वही दिखाई देता है। और आंखें बंद करो तो भीतर भी वही विद्यमान है, तो खोल के देखो तो जगत की विभिन्न रूपों में विभिन्न आकृतियों में सत्ता रूप से वह अपना प्रेमास्पद ही विद्यमान है ऐसा दिखने लग जाता है। और बाहर से मुख मोड़ लो, अंतर्मुख हो जाओ, आंखें बंद कर लो, पांचों ज्ञानेंद्रियों से संबंध तोड़ लो, शरीर और संसार से असंग हो जाओ, तो अपने में वही विद्यमान है, वही दिखता है, उसी का दर्शन होता है, उसी से मिलन होता है, उसी में अपना अहम समाहित हो जाता है। यह जीवन का सत्य है। प्रारंभ में जब मुझे ईश्वरवाद की चर्चा सुनाई गई और मनुष्य के जीवन में विकास के लिए, दुखों की निवृत्ति के लिए यह एक अनिवार्य तत्व है ऐसा मैंने सुना, तो जैसी अपनी पुरानी आदत थी, वैज्ञानिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि के आधार पर इसकी व्याख्या में खोजने लगी कि जो दिखता है वो क्या है, जिसका आभास मिलता है वो क्या है, जिसके आकर्षण में व्यक्ति सारी सृष्टि को धूल के समान नगण्य मानने लग जाता है वो क्या है। बहुत बहुत से प्रश्न पैदा हुए और मैंने खूब सोचा विचारा, और केवल सोचने विचारने की बात नहीं, संत ने उस सत्य से अभिन्न होने के लिए जो प्रयोग बताया उस प्रयोग को भी मैंने करना पसंद किया, करके देखो क्या होता है। क्योंकि जो स्थूल जगत के आधार पर वैज्ञानिक के अध्ययन किए जाते हैं उनमें प्रयोगों का बहुत महत्व पढ़ाया जाता है। भाई जो भी तुम्हारे सामने प्रश्न है उसका उत्तर जो सामने तुम्हारे आ रहा है उसको करके देखो, सही निकले तो सही और नहीं तो फिर दूसरा खोजना। तो इस तरह की एक पृष्ठभूमि बनी हुई थी। संत की वाणी को सुन करके सोचना विचारना भी हुआ और उसमें से जो कुछ अपने प्रयोग में लेने के लायक मालूम हुआ अपनी हैसियत के अनुसार, तो प्रयोग करने का मौका भी आया। उन सारी बातों के आधार पर आज अपने भाई बहनों के सामने बड़ी ही दृढ़ विश्वास के साथ यह बात निवेदन कर रही हूं मैं कि इसमें जरा भी संदेह नहीं रखना चाहिए। वर्तमान दशा को देखकर सत्य के परिणाम में अविश्वास नहीं करना चाहिए। वर्तमान दशा क्या है? तो वर्तमान दशा यह है कि बनने बिगड़ने वाला संसार सत्य मालूम होता है, ठोस मालूम होता है, पकड़ में आने वाला मालूम होता है, ये वर्तमान दशा है। और नित्य विद्यमान परमात्मा अत्यंत रहस्यमय मालूम होता है, छिपा हुआ मालूम होता है, और रह रह के उसके संबंध में संदेह भी उठता रहता है, क्या जाने है कि नहीं है, क्या जाने किसी को मिलता भी है कि नहीं है, ये वर्तमान दशा है। तो इस वर्तमान दशा को देख करके हम लोगों को संत की वाणी में संदेह नहीं करना चाहिए, वेद के वाक्यों में संदेह नहीं करना चाहिए, गीता रामायण के वाक्यों में संदेह नहीं करना चाहिए। एक सज्जन एक बार बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, मैं सुन रही थी, कहने लगे कि देखो तो भला, अगर दुनिया में कोई बात पक्की करानी होती है तो पांच पंच को बैठा लिया जाता है, नगर के 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुला के बैठा लेते हैं और कहते हैं कि देखो, 5 पंच के सामने ये बात मैं स्वीकार करता हूँ, तो सब लोग मान लेते हैं कि वो आदमी अपने वचन पर दृढ़ रहेगा, क्योंकि उसने 5 पंच के बीच में कह दिया है। और सोचो तो भला, 18 अक्षौहिणी सेना के लोग खड़े हैं और उस बीच में खड़े होकर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसके कुशल क्षेम का मैं वहन करता हूँ। तो 5 पंच के बीच में कही हुई बात आदमी नहीं बदलता है, तो इतने बड़े जन समूह के बीच में कही हुई बात कृष्ण भगवान बदल देंगे? बहुत मजा आया सुन करके, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सोचा इस आदमी ने दलील तो अच्छी निकाली, सो नहीं बदल देंगे। उन्होंने मनुष्य के साथ अपना जो संबंध बताया है उस पर वे अडिग रहते हैं। शरण में आए हुए के कुशल क्षेम के वहन करने की प्रतिज्ञा उन्होंने जो मनुष्यों के प्रति की है उसको वे कभी नहीं बदलते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं। अपने को भ्रम हो गया है तो भ्रम के समय में भ्रमित काल का जो अपना अनुभव है उसके आधार पर सत्य में संदेह कभी नहीं करना चाहिए, परमात्मा के संबंध में संदेह कभी नहीं करना चाहिए, गुरु की वाणी में संदेह कभी नहीं करना चाहिए, वेद पुराण गीता रामायण के वाक्यों में संदेह कभी नहीं करना चाहिए। क्या करना होगा? आज आप अपनी ओर देखते हैं तो शरीर प्रत्यक्ष दिखाई देता है, ऐसा लगता है अपने को। क्यों? क्योंकि स्थूल स्तर से इंद्रिय दृष्टि से जीवन को देख रहे हैं, तो इंद्रिय दृष्टि से देखेंगे तो स्थूल जगत ही दिखाई देगा, और क्या दिखेगा? पंच भौतिक तत्वों से बनी हुई इंद्रियां हैं और पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ जगत है। तो जिस जाति का जो औजार है उससे वही दिखेगा, भौतिक तत्वों से बनी हुई इंद्रियों के द्वारा भौतिक तत्व का ही दर्शन होगा, अलौकिक का दर्शन नहीं होगा। तो आज अपनी दशा क्या है, तो आज अपनी ओर देखो तो मालूम होता है कि ठोस शरीर ही तो सत्य लगता है, कहाँ है परमात्मा उसका तो कहीं पता ही नहीं चला। तो इंद्रिय दृष्टि के स्तर से जीवन को देखना ये अधूरा देखना है, यह एक स्थूल दृष्टिकोण है, इसके फैसला पर विश्वास मत करो। इंद्रिय दृष्टि से देखे हुए को अंतिम बात मत मानो। क्यों? क्योंकि जब इंद्रियों से संबंध तोड़ लिया जाता है तो स्थूल जगत गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। आंखें नहीं रही तो दृश्य जगत गायब हो गया, कान में सुनने की शक्ति नहीं रही तो ध्वनि जगत गायब हो गया, नाक में सूंघने की शक्ति नहीं रही तो गंध का अनुभव खत्म हो गया, चमड़े में स्पर्श करने की शक्ति नहीं रही तो उसकी सारी अनुभूतियां खत्म हो गई। तो जो इंद्रियों के स्तर पर आपको सत्य मालूम होता है उसी पर विचार करेंगे तो बुद्धि के स्तर पर उसमें निरंतर परिवर्तन दिखाई देगा, और इसी को देख करके निर्माण में विनाश का दर्शन करके संत कबीर ने हम लोगों को सुनाया। क्या सुनाया? तो उन्होंने कहा कि हाड़ जले जैसे लकड़ी, केस चले जैसे घास, सब जग जलता देखकर कबीरा भया उदास। ये कौन सी दृष्टि है? तो ये इंद्रियों के ऊपर की दृष्टि है, ये बुद्धि की दृष्टि है, जिस दृष्टि से देखने पर सारे जगत में निर्माण के साथ साथ विनाश का क्रम दिखाई देता है। इसलिए मैं आप भाई बहनों से निवेदन कर रही हूँ कि वर्तमान दशा में आपको इंद्रिय दृष्टि से जो कुछ दिखाई देता है उसको अंतिम फैसला मत मानिए। सत्य की स्वीकृति के प्रभाव के लिए आप उसका प्रयोग करिए। उस प्रयोग में क्या मिलेगा कि जिस दिन से आपने उत्पत्ति विनाश युक्त सृष्टि का सहारा अपने लिए छोड़ दिया, जिस दिन से आपने बिना देखे बिना जाने परमात्मा को अपने जीवन का आश्रय बना लिया, उसी दिन से अहम रूपी अणु में परिवर्तन आरंभ होता है। उस परिवर्तन का यह परिणाम होगा कि आज संसार आपको जैसा दिख रहा है आगे वैसा नहीं दिखेगा। आज निर्माण और विनाश के क्रम में सुख बुद्धि और सद्बुद्धि बन गई है, ये बदल जाएगी, इसमें सुख बुद्धि नहीं रहेगी। फिर क्या होगा कि जिस नित्य विद्यमान को बिना देखे बिना जाने आपने अपना कहकर स्वीकार किया है, वह बिना देखा हुआ आगे चल करके देखा हुआ हो जाएगा, बिना जाना हुआ आगे चल करके जाना हुआ हो जाएगा। और आज साधन के प्रारंभ में जो अत्यंत रहस्यमय मालूम होता है वह इतना प्रत्यक्ष हो जाएगा, और उसका प्रत्यक्ष होना इतना व्यापक प्रभाव वाला होता है कि सिवाय उसके और दूसरा कोई दिखेगा ही नहीं। ऐसा होता है तो आप कहेंगे कि आज छिप क्यों गया, तो मैं कहूंगी कि वो छिपा नहीं है। स्वामी जी महाराज ने मेरे संदेह की निवृत्ति के लिए अनेक प्रकार की युक्तियों को मेरे सामने रखा, तो उन्होंने ये कहा कि तुम सोचो तो सही कि एक सृष्टि की तो कौन कहे, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके एक अंश में है, आपने सुना है ना जी, सुना है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, दिख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति राजे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम पर करोड़ों ब्रह्मांड आश्रित हैं, जिसके वो छिपेगा कहां। सोचो, जो इतना विस्तार है, इतना विस्तार है कि जिसके एक अंश में कोटि कोटि ब्रह्मांड समा जाए, उस उतने विस्तृत असीम अनंत विशाल को तुम कहते हो कि छिप गया। कहां छिपेगा भाई, छोटा सा हो, सृष्टि से छोटा होगा तो सृष्टि में छिपेगा। जो इतना विशाल है, इतना विशाल है असीम अनंत है कि जिसके एक अंश में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समा जाए, उसके लिए हम सोचते हैं कि छिप गया तो वो कहाँ छिपेगा, वो छोटा है कि कहीं समा जाएगा, तो वो कहीं नहीं छिपता है, वो जहां के तहां ज्यों के त्यों अपने असीम अनंत अपनी महिमा में आप अभिभूत जैसे के तैसे विद्यमान है। उसके छिपने के लायक कोई जगह है नहीं, उसको छिपाने के लायक उससे बड़ी वस्तु चाहिए जी, समझ में आता है? उसको छिपाने के लायक उससे बड़ी वस्तु चाहिए तब न छिपेगा, तो उससे बड़ा कुछ है क्या? नहीं है, इसलिए वो छिपेगा कहां, वो छिपा नहीं है। बड़ा दुख होता है मुझे जब कभी मैं सोचती हूं कि हाय मैंने क्या किया, जीवन की अनमोल घड़ियों को कैसी दशा में बिता दिया। बड़ा दुख होता है सोचने से क्या कि ऐसे अनंत माधुर्यवान जो अपनी मधुरिमा की गोद से किसी भी प्राणी को बाहर निकालते ही नहीं है, छोटे से छोटे कीट पतंग भी उनके अनंत माधुर्य के भीतर समा जाते हैं, वे अपने प्रेम के रस से सबका पालन पोषण करते हैं, सबको अपना करके जानते हैं। ऐसे के रहते हुए अगर अनाथ बन करके मैंने एक क्षण भी दुख में बिताया तो वह क्षण मेरा बेकार गया। आज अगर वह प्रेम स्वरूप परमात्मा मेरे भीतर बाहर सब तरफ विद्यमान होकर अपने प्रेम रस से मुझको सींचता हुआ मेरे अनुभव में नहीं आता है तो इसका अर्थ यह है कि मैंने अपनी आंखों पर जड़ता का पर्दा डाल दिया है, जड़ता का घोर अंधकार है, मेरे पास आंखें ही नहीं है कि उस अनंत असीम विशाल की उपस्थिति का अपने को पता चले। हृदय का दरवाजा मैंने बंद कर दिया है, इतनी संकीर्णता इतनी स्वार्थपरता भर लिया है कि जिससे वह इतना कठोर हो गया कि उसमें उन प्रेम स्वरूप परमात्मा की ओर से प्रेम की लहरियां आ रही हैं, परंतु हाय रे हृदय की जड़ता और कठोरता, उसमें कोई उस प्रेम का स्पंदन हो ही नहीं रहा, टकरा टकरा करके वापस जा रही है प्रेम की लहरियां, उधर से कोई कमी नहीं है, उधर से रस बरस रहा है, यहां दरवाजा बंद है। जड़ता की कठोरता की दीवाल सख्त हो करके हृदय को वज्र बना करके रखा है, तो मेरी भूल है। सुख भोग की तृष्णाओं में हृदय की सारी कोमलता सूख गई, सब सरसता सूख गई, शुष्कता और कठोरता में वह सेंसिटिविटी नहीं है, वह रिसेप्टिविटी नहीं है कि उधर से प्रेम स्वरूप की ओर से अनंत कृपालु की ओर से जो प्रेम बरस रहा है, कृपा बरस रही है, उसके स्पर्श से इसके भीतर कोई स्पंदन पैदा हो, ऐसी सेंसिटिविटी खत्म हो गई, ऐसी संवेदनशीलता खत्म हो गई, तब क्या हो रहा है? तो भीतर में शुष्कता जड़ता नीरसता कठोरता भरी है, और उससे जब आदमी व्याकुल होता है तो बाहर बाहर खोजता है, दौड़ता फिरता है संसार में कौन मेरा आदर करे, कौन मुझको सम्मान पूर्वक शब्द सुनावे, कौन मुझको मीठी बोली बोले, कौन मेरी सहायता करे, कौन मेरे सूखे जीवन को सरस बनावे। जब मेरी समझ में ये बात आई तो आंखों के सामने से अंधकार मिट गया, पर्दा जैसे हट गया। मैंने कहा कि ये तो बड़ी भारी भूल हो गई, आंखों पर पट्टा बांध लो काला घना अंधकार, और उसके बाद कहो कि सूर्य का तो प्रकाश ही नहीं है, अंधकार है। तो इसमें ये बात नहीं है कि सूर्य छिप गया, ये बात नहीं है कि उसकी किरणें गुप्त हो गईं, ये बात नहीं है कि उनका प्रकाश मिट गया, सो नहीं, वो तो ज्यों के त्यों जहाँ के तहाँ जैसे के तैसे विद्यमान ही है और सदा सदा के लिए रहने ही वाला है। संत की कृपा से जब अपनी आंखों पर से अविश्वास का पर्दा हट जाए, संदेह का पर्दा हट जाए, जड़ता की दीवार टूट जाए, तो ज्यों का त्यों जहाँ के तहाँ विद्यमान उस अनंत परमात्मा के दर्शन का, उनके स्पर्श का, उनकी मधुरता का, उनकी सरसता का अनुभव आपको ऐसा सराबोर कर देगा कि उसके बाद फिर अपनेपन का भी कोई भास शेष नहीं रहता। ये है इस जीवन का रहस्य। आरंभ कहाँ से करें? पिछले दो बैठकों से ये चर्चा हो रही है, आरंभ कहाँ से करें। तो आरंभ करने के लिए आप बिल्कुल निर्भय निश्चिंत होकर के परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करिए, उनको अपना मानिए, सारी सृष्टि उनकी है ऐसा जानिए, और उन्हीं की दी हुई शक्ति के द्वारा उन्हीं की सृष्टि की सेवा में जो सहयोग लगा सकते हैं लगाइए, और उसका अर्थ अपने लिए रखिए कि परम प्रेमास्पद प्रभु को प्रसन्नता होगी। तो हमारे महाराज जी ने देह के अभिमान काल में साधक के लिए बड़ी अच्छी साधना बताई कि भाई देह का आभास तुम्हारा जब तक बना हुआ है तब तक छोटा से छोटा कार्य करके तुम प्रभु की प्रसन्नता का अर्थ लेकर चलो तो देह की आसक्ति भी मिट जाएगी और उसकी प्रसन्नता जब तुम्हारे जीवन का स्पर्श करेगी तो तुम जहाँ हो वहीं पर उस अनंत रहस्यमय का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा, मिलना हो जाएगा, अभिन्नता हो जाएगी, सदा के लिए तुम और वे एक हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने सुनाया। बहुत छोटी छोटी बातों का उदाहरण महाराज जी कहते कि देखो अगर किसी को प्यास लगी है और तुम्हारे हाथ में बल है, अपने आसपास में परिपार्श्वों में जल है, तो प्रेम पूर्वक प्रभु को अर्पण करने के समान आदर और प्रियता के भाव से प्यासे शरीर को एक गिलास जल अर्पण कर दो, तो जल तो जाके उसके पेट की थैली में रह जाएगा, परंतु तुमने जिस प्रेम से प्रभु की प्रियता के लिए जल पिलाया तो तुम्हारे हृदय का वह प्रेम भाव भौतिक सीमाओं को तोड़ता हुआ अलौकिक परमात्मा तक पहुंच जाएगा, उससे तुम्हारे चित्त में जो शुद्धि आएगी, उससे तुम्हारे हृदय में जो कोमलता आएगी, उस आधार पर तुम अनंत परमात्मा के प्रेम के लहरियों का अनुभव कर सकोगे, तुम्हारे भीतर वह प्रेम भाव स्पंदित होगा, उनके और तुम्हारे बीच की दूरी का नाश होगा, इतना महत्व है। इस प्रकार से भजन के तीन रूप बताए महाराज जी ने, सेवा त्याग और प्रेम। सेवा करते समय इस भाव से सेवा करो कि अनेक रूपों में मेरे प्यारे ही तो हैं, इसलिए उनकी सेवा में विद्यमान वर्तमान प्राप्त सामर्थ्य को लगाओ तो उसके अर्थ में इस बात पर ध्यान रहे कि मेरी इस छोटी सी सेवा के बदले में प्रभु को बड़ी से बड़ी प्रसन्नता होगी। वे आनंदित होंगे कि उनकी सृष्टि में मैंने कुछ सेवा कार्य किया। तो कर सेवा हो गई। त्याग का अर्थ क्या है कि जिस जगत की सेवा करो उससे भी कुछ मत मांगो और जिस प्रभु के प्रेमी बनो उनसे भी कुछ मत मांगो। तो त्याग हो गया और प्रभु को अपना मानने के फल स्वरूप हृदय से जो अपनेपन का भाव उपजे वो उनको अर्पण करते रहो तो ये प्रेम हो गया। तो भजन जो है वह तो प्रभु के प्रति अगाध प्रियता का नाम है और उस प्रियता में सेवा तथा त्याग से सहयोग मिलता है। तो सेवा भी भजन का एक रूप है, त्याग भी भजन का एक रूप है और असली अर्थ है प्रभु के प्रति आत्मीय संबंध। तो आत्मीयता के संबंध से भजन की अभिव्यक्ति होती है, सेवा और त्याग से भजन की पुष्टि होती है। इस अर्थ में महाराज जी ने कहा कि भगवत भजन तो मानव का जीवन है। ऐसा थोड़े कि 24 घंटे में से हमने प्रोग्राम बना लिया और आधा घंटा भजन करेंगे हम। तो आधा घंटा भजन करोगे तो बाकी 23.5 घंटे क्या करोगे? भजन तो खंडित हो गया। सो नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु के आत्मीय संबंध से जागृत प्रियता जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में उनकी याद दिलाती रहेगी और साधक के जीवन में भगवत स्मृति का जागृत हो जाना भजन है। ऐसा भजन अखंड रूप से चलता है। जो काम करो वो प्रभु की पूजा, जो घटना हो रही है वो प्रभु की लीला और क्षण क्षण में उनकी याद आ रही है, प्रियता उपज रही है, इसका नाम भजन है। और ऐसा भजन हर घर बारी सामाजिक व्यक्ति, समाज का काम करने वाला, घर गृहस्थी का संचालन करने वाला, हर भाई हर बहन इस प्रकार का भजन कर सकते हैं। जब चाहें तब कर सकते हैं। पूरे समय के लिए जीवन को उनके समर्पित करके उन्हीं की दी हुई शक्ति से उन्हीं का दिया हुआ काम करें और उसके बदले में उनके प्रेम की प्रतीक्षा में रहें। तो काम करें तो उनकी पूजा और घटना देखें तो उनकी लीला और शांत हो जाएं तो उनकी स्मृति। ये लगन कभी खंडित होगा जी? नहीं होगा। बड़ी भारी भूल है कि हम लोग सोचते हैं कि क्या बताएं, आज का जीवन तो इतना व्यस्त हो गया कि भजन के लिए समय ही नहीं मिलता। तो भजन के लिए समय नहीं मिलता है तो मिला हुआ समय कहां जाता है भाई? क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि दैनिक जीवन का जो रूटीन है भजन उससे कुछ भिन्न अलग की बात होती है, सो नहीं होती है। एक साधक की घटना महाराज जी ने हम लोगों को सुनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, कभी कभी सुनाया करती हूँ। गुरु शिष्य दो जने थे, बड़े अनुरागी थे,
भगवान के भक्त थे, एक दूसरे में बड़ा प्रेम था। गुरु महाराज के लिए सवेरे सवेरे उठकर तो शिष्य देवता जो थे किसी नदी के पास रहते थे, गंगा जी का ही तट होगा, तो एक बड़ा सा जल का पात्र लोटा लेकर के शिष्य जाते थे गंगा जी के तट पर और खूब उसको बालू से मिट्टी से मांझ करके एकदम चमाचम साफ करके गंगा जल भर के ले आते थे। गुरु महाराज
जब ब्रह्म मुहूर्त की साधना से उठते तो उसी जल से वे आंख मुंह धोते, इसके लिए वो शिष्य तैयारी करके रखते थे। बड़ी प्रियता थी शिष्य में गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, और गुरु महाराज की सेवा का कार्य करने में उनको बड़ा आनंद आता था। मैं सेवा की महिमा आपको बता रही हूं। एक दिन की घटना है, ये कथा कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। एक दिन की घटना है कि शिष्य सवेरे सवेरे उठ करके जल का पात्र लेकर पहुंच गए गंगा जी के पास और उसको मांजने लगे, बालू मिट्टी लगा करके लोटा साफ करने लगे। तो गुरु महाराज की सेवा में इतनी प्रियता है उनको, इस बात से परम प्रेमास्पद प्रभु को बड़ी प्रसन्नता है। और जब उधर से प्रसन्नता की लहर आई तो साधक के भीतर इतना आनंद, इतना प्रेम भर गया कि बाहर से तो हाथ चल रहा है, लोटे को रगड़ रहे हैं, और भीतर प्रेम के अतिरेक में अपने आप में मस्त हैं। तो इतनी प्रसन्नता छा गई, इतनी प्रसन्नता छा गई कि बाहर की क्रिया का उनको याद ही नहीं रहा। तो बहुत समय बीत गया, उधर गुरु महाराज मुंह हाथ धोने के लिए बैठे हैं, दूसरे दूसरे शिष्य लोग जल लाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन गुरु महाराज को उस शिष्य का लाया हुआ जल इतना प्रिय है कि वो उसी की प्रतीक्षा में बैठे रहे कि ठहर जाओ, अब आ रहा होगा, अब आ रहा होगा। बहुत देर होने लगी तो दो चार लोग दौड़े कि चल के देखो तो क्या कर रहा है, आ ही नहीं रहा है, क्या बात है। तो पहुंच गए वहां तो देख रहे हैं कि वो आनंद की मस्ती में आप मस्त हो गया है और हाथ जो है वो लोटे के चारों ओर बालू मिट्टी के साथ घूम रहा है। तो वो मांजना जो शुरू किया तो वो मांजता ही रह गया, क्रिया ही होती रह गई। प्रेम के अतिरेक में वो बाहर का सब संसार वो भूल गया, इतना आनंद। तो क्या हो गया, शरीर धर्म से ऊपर उठ गया। किस लिए, सेवा की प्रियता में। तो गुरु की सेवा के प्रति जो इसकी निष्ठा है वो निष्ठा परमात्मा को पसंद आ गई, और प्रेम पूर्वक सेवा की कृति देख करके परमात्मा का आनंद उसके हृदय में भर गया। तो अब शरीर का भास किसको है, ऐसा भजन। तो आप क्या कहेंगे, वो लोटा मांज रहा है, जल भर रहा है कि असली भजन कर रहा है जी, असली भजन हो रहा है। इस प्रकार का भजन, इस प्रकार का पूजन, इस प्रकार का प्रैक्टिकल ईश्वरीय प्रेम जो कि रोम रोम में भर जाए, हर क्रिया को सरस बना दे, हर प्रवृत्ति को पूजा बना दे, हर क्षण में अपने प्यारे की स्मृति को जगा दे, ऐसा जीवन हम भाई बहनों का हो सकता है, इसी वर्तमान में हो सकता है, इसी कलिकाल में हो सकता है, अमीरी और गरीबी में हो सकता है, आरोग्यता और बीमारी में हो सकता है, क्योंकि शरीर से इस भजन का कोई संबंध नहीं है। ये स्वधर्म है, भगवत भजन जो है वो स्वधर्म है, और प्रभु को अपना मानने से इसका आरंभ होता है। और प्रभु जब अपनी ओर से अपना रस साधक के जीवन में भर देते हैं तो ये भजन पूर्ण हो जाता है।